तारीख 14/5/1985, श्री परमागमसार, बोल नंबर 914 ऊपर, पूज्य भाई श्री शशिभाईनू भावनगरमां प्रवचन, सड़ंग प्रवचन नंबर 539।
ચાર અનુયોગના વિષયમાં સ્પષ્ટીકરણ છે અને દ્રવ્યાનુયોગના વિષય સંબંધિત આ બોલમાં વાત છે. ચારેય અનુયોગના સમસ્ત વિસ્તારમાં કોઈ મૂળ ચીજ હોય તો તે આત્માની દ્રષ્ટિ છે, ત્યાંથી શરૂ કરે છે. મૂળ ચીજ આત્માની દ્રષ્ટિ છે ચારેયના યોગમાં. જો પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની દ્રષ્ટિ ન થાય તો એ બધું જાણ પણ વિપરીત દ્રષ્ટિથી હોવાને લીધે મોક્ષને સાધતું નથી, અથવા આત્માને દુઃખથી અને ભાવભ્રમણથી છૂટવા તે જ્ઞાન કાર્યકારી થતું નથી. તેથી ચારેયના યોગમાં જે દ્રષ્ટિ પ્રધાન વિષય છે એ વિષયની સવિશેષ પ્રધાનતા છે. બીજો વિષય ઘણો સમજવાનો જાણવાનો વિસ્તારમાં આવે છે તો પણ એની એટલી પ્રધાનતા નથી જેટલી દ્રષ્ટિ કરવાનો જે વિષય છે શુદ્ધાત્મા એની પ્રધાનતા છે. એટલે કે મૂળ ચીજ આત્માની દ્રષ્ટિ છે, આ મૂળ ચીજ છે. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન તો શાસ્ત્રનો જેને અભ્યાસ હોય તેની પાસે જોવામાં આવે, પણ શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે કે નહીં, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે કે નહીં એ મૂળ ચીજ નથી. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ન હોય અને આત્માની દ્રષ્ટિ હોય એવું બની શકે છે, સંભવિત છે, તો એને એમ કહ્યું કે શાસ્ત્ર ભણવાની એને અટક નથી. અને ગમે તેટલું શાસ્ત્ર જ્ઞાન હોય, લબ્ધિ પ્રગટી હોય અને શાસ્ત્ર જ્ઞાન 11મું 9મું થાય તો પણ મૂળ ચીજ આત્માની દ્રષ્ટિ જેને નથી તે જ્ઞાન ભવ નિવૃત્તિના હેતુરૂપ થતું નથી. એ જ્ઞાન ભવને છેદતું નથી. આત્માની દ્રષ્ટિ સહિતનું જ્ઞાન ભવ નિવૃત્તિના કારણરૂપ થાય છે. શ્રીમદજીએ એટલા માટે એ વાત લીધી છે. આત્માની દ્રષ્ટિ કહો કે સમ્યક દર્શન કહો, જે મતે શ્રુત જ્ઞાન ભવના હેતુરૂપ થતું હતું તે જ મતે શ્રુત જ્ઞાન ભવ નિવૃત્તિરૂપ પરિણમવા લાગ્યું તેવા કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યક દર્શનને નમસ્કાર હો. કેવું મહિમાથી વાત લખી છે. મૂળ ચીજ ઉપર કેટલું વજન છે. સમ્યક દર્શનને કલ્યાણ મૂર્તિ સમ્યક દર્શન કહ્યું ત્યાં, એટલું વિશેષણ લગાડી દીધું. એ મૂળ ચીજ આત્માની દ્રષ્ટિ છે, સર્વમાં મૂળ ચીજ આત્માની દ્રષ્ટિ છે. દ્રષ્ટિ વિનાનું જ્ઞાન અજ્ઞાન છે અને દ્રષ્ટિ વિનાનું આચરણ તપશ્ચર્યા વગેરે બાળપણ અને બાળ વ્રતમાં લેખવામાં આવ્યા છે અને તે બધા ભાવબંધનના કારણ થાય છે. કોઈ ભવની વૃત્તિના કારણ થતા નથી. તેથી દ્રષ્ટિ કેમ થાય અને દ્રષ્ટિ થાય તેનું ઘણું મહત્વ છે એ વિષય ઉપર ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનોમાં ઘણું વજન રહ્યું છે, અથવા એમના સર્વ પ્રવચનોમાં આ વિષય કેન્દ્ર સ્થાને રહ્યો છે કે તું જે કાંઈ કરે છો તે શું માનીને કરે છો, તારી દ્રષ્ટિ ક્યાં છે ને તું કરે છો. ક્રમબદ્ધ પર્યાયનો વિષય બહુ વિસ્તારથી થાપ્યો તો પણ એમ કહ્યું કે જેની દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર છે એને પર્યાયની ક્રમબદ્ધતાનું જ્ઞાન યથાર્થ છે, અથવા એને પર્યાય ક્રમબદ્ધ છે સાચી રીતે. જેની દ્રષ્ટિ આત્મા ઉપર નથી એનો ક્રમબદ્ધનો વિષય પણ ખોટો અને એનું શાસ્ત્ર જ્ઞાન બધું ખોટે ખોટું. એક વાત એની સાચી, પોપટનું બે ને બે ચાર ખોટું એમ શાસ્ત્ર અનુસારનું જ્ઞાન પણ એનું ખોટું ગણવામાં આવે છે. આટલું મહત્વ છે આત્માની દ્રષ્ટિનું. જો દ્રષ્ટિમાં આત્મા નથી તો અનાદિથી દ્રષ્ટિ પુદ્ગળ ઉપર છે, જળ ઉપર છે, અથવા જળને સાથે સંબંધ કરનારા રાગ પરિણામ ઉપર દ્રષ્ટિ છે જીવની. એવી જે અનાત્મ દ્રષ્ટિ છે તે પાપ દ્રષ્ટિ છે, અથવા અનંત પાપની પરંપરાનું મૂળિયું એ મિથ્યા દ્રષ્ટિપણું છે. તેથી મૂળમાંથી દ્રષ્ટિ તો બદલાવી જોઈએ. બીજી બધી વાત પછી છે, પહેલી વાત દ્રષ્ટિ બદલવાની છે. એટલે એમ કહે છે કે મૂળ ચીજ આત્માની દ્રષ્ટિ છે, દ્રવ્યાનુયોગ વિના નિવેડો નથી, અને એ દ્રષ્ટિનો વિષય કોઈ વિશેષપણે છે તો ચારે અનુયોગમાં દ્રવ્યાનુયોગમાં છે. તેથી ભલે વિદ્વાન પંડિત થઈને બીજા અનુયોગોનો અભ્યાસ કરે તો પણ દ્રવ્યાનુયોગ વિના નિવેડો નથી. હવે અહીંથી નિષેધ ચાલે છે અજ્ઞાનીઓનો કે આ કાળમાં દ્રવ્યાનુયોગથી આમ થઈ જાય ને તેમ થઈ જાય, ફલાણું થઈ જાય ને ઢીંગણું થઈ જાય. અમે તો કથાનું યોગમાં છીએ ને અમે તો કર્ણાનું યોગમાં કર્ણાનું યોગનો અભ્યાસ કરીએ. કહે છે કે દ્રવ્યાનુયોગ વિના નિવેડો નથી. શરૂઆતમાં પણ એનું મહત્વ છે, આગળ વધવામાં પણ એનું જ મહત્વ છે, અને ઠેઠ શુક્લ ધ્યાનના કારણમાં પણ દ્રવ્યાનુયોગને જ ગણવામાં આવ્યો છે. શ્રીમદજી એ વાત કરી છે કે દ્રવ્યાનુયોગ પરમ ગંભીર છે અને શુક્લ ધ્યાનનું કારણ છે. આમ છે, કહેવાની જરૂર નથી કે ધર્મ ધ્યાનનું એ કારણ છે. જ્યારે એને શુક્લ ધ્યાનનું કારણ કહ્યું ત્યારે એ ધર્મ ધ્યાનનું કારણ છે વાત પછી કહેવાની રહેતી નથી, કેમ કે શુક્લ ધ્યાન તો ધર્મ ધ્યાનથી પણ ઉજ્જવળ પરિણામ છે, અથવા ધર્મ ધ્યાનની જ વિશેષ ઉજ્જવળતા એને શુક્લ ધ્યાન કહેવામાં આવ્યું છે. દ્રવ્યાનુયોગ વિના નિવેડો નથી અને સમાગમ વિના દ્રવ્યાનુયોગ સમજાય તેમ નથી. ચાવી આપી એ દ્રવ્યાનુયોગ એટલો ગંભીર અને એના મર્મો એટલા ઊંડા છે કે સત્પુરુષના જ્ઞાની પુરુષના સમાગમ વિના, અનુભવી પુરુષના સમાગમ વિના તે સમજાય એમ નથી. સમજાશે નહીં તારી મેળે સમજવા જઈશ, કલ્પના એ ચડી જઈશ. આમ કહે છે, આમ કેવી લાઈન સાંજી છે. કેમ સત્પુરુષનું આટલું મહત્વ છે મુમુક્ષુના જીવનમાં, એનું આ કારણ છે. પેલા કહેલું આ બધી ભક્તિ 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 કરે છે, ભક્તિની વાત કરે છે, પણ મૂળ વાત જ એ છે કે દ્રવ્યાનુયોગ વિના નિવેડો નથી અને સત્સમાગમ વિના તને સમજાય એમ નથી. હવે હું ક્યાં જઈશ? પોતાને એમ લાગે કે ઘણી બુદ્ધિ છે મારામાં, હું સંસ્કૃત વ્યાકરણ માગધી વગેરે ભણેલો છું, ઘણા વખતનો મારો શાસ્ત્રાભ્યાસ છે અને તેથી હું બધું સમજી શકું, કોઈ પણ વાતનો અર્થઘટન કરી શકું. કહે છે કે આમાં પત્તો ખાય એવું નથી, માત્ર ઉઘાડ કામ કરે એવું નથી, જ્ઞાનનો ઉઘાડ માત્ર અહીંયા સફળ થઈ જાય એવી વાત નથી. કેમ કે આ એક એવો વિષય છે કે જ્યાં પહોંચવા માટે બુદ્ધિની પહોંચ નથી, એવો વિષય છે. બુદ્ધિથી પેલે પારનો વિષય છે, નિર્વિકલ્પ તો છે, અનુભૂતિ પણ નિર્વિકલ્પ છે, તો ત્યાં બુદ્ધિની મર્યાદા આવી જાય છે. પછી આગળ જવાનું થાય છે ત્યારે એ વિષય હસ્તગત થાય છે. એટલે કોઈ માત્ર બુદ્ધિ દ્વારા પહોંચવા ધારે પ્રયત્ન કરે અને પહોંચી જાય એમ બની શકે એવું નથી. મનની પાર મનાતીત વિષય છે, વચનાતીત તો છે જ, કહેવાની જરૂર નથી કે વચનાતીત છે, પણ વિકલ્પાતીત ને મનાતીત વિષય છે. એવા વિષયને તો મન દ્વારા ગ્રાહ્ય કરવા માગે, ગ્રહણ કરવા માગે, સમજણ બહારનો વિષય છે. એ વિષયની સમજણ એમાં છે નહીં. મનથી કરી લે છે ત્યાં સુધી જી અનુભવ નથી. મનથી કરી લે છે એમાં એટલું કરી લે છે કે આ મનથી પાર છે એમ મનમાં કરી લે છે. તેથી મન સંબંધિત પ્રયત્ન કરવાનો એનો ઉત્સાહ નથી. પણ તે કાળે સ્વરૂપના ભાવભાષણ કાળે હજી મનનું કાર્ય છે, તો પણ એ મનના કાર્યમાં રાગની આડ વિના સીધા જ્ઞાનથી એને એ કળવાનું કામ કર્યું છે એવી વાત છે. ત્યારે એને ખરેખર જેવો છે એવો પોતાનો આત્મા, જેવા સ્વભાવે છે, જેટલું સામર્થ્ય છે એટલું ને એવડું સામર્થ્ય એને ભાસે છે, ત્યારે એને ખરો મહિમા ઉપજે છે. મહિમા ઉપજવા છતાં રાગને વધારતો નથી, અથવા રાગ દ્વારા મહિમા કરવો એ પ્રશ્ન ત્યાં નથી, મન દ્વારા મહિમા કરવો એ પણ પ્રશ્ન ત્યાં નથી. કેવો સિદ્ધાંત મૂકો છે કે દ્રવ્યાનુયોગ વિના નિવેડો નથી. અત્યારે દ્રવ્યાનુયોગ ન હોય એ વાત તો રહી નહીં, દ્રવ્યાનુયોગ વિના તો નિવેડો નથી અને સમાગમ વિના દ્રવ્યાનુયોગ સમજાય એમ નથી. અરૂપી પદાર્થ, એના અરૂપી પરિણામો અને અનાદિનો અજાણ્યો અંતર્મુખનો માર્ગ, આ એને કોઈ રીતે બહિર્મુખ હોય વાત તો ગમે તેમ કરીને ક્યાંક પકડી લે, પણ અંતર્મુખનો માર્ગ, કેમ અંતર્મુખ થવું, કેમ અંતર્મુખ મળવું, એનાથી આ જીવ તદ્દન અજાણ છે. ક્યારેય ભૂતકાળમાં એ માર્ગનો એ ભાવનો એને પરિચય થયો નથી, તેથી પોતાની મેળે કોઈ જીવ અંતર્મુખ થાય એવું બનતું નથી. પાવે નહીં ગુરુ ગમ વિના યહી અનાદિ સ્થિત, વિના નયન પાવે નહીં, વિના નયન કી બા સેવે સદગુરુ કે શરણ સો પાવે સાક્ષાત. નાખે છે કે યમ નિયમ સંયમ માં એ વાત દીધી, એમ નિયમ સંયમ આપ કિયો પુનિ ત્યાગ વિરાગ થાક લ્યો, એમાં શાસ્ત્ર જ્ઞાન લઈ લીધું, મત મંડન ખંડન બોધ થયો, તદપી પછી હાથ હજુ ન પડ્યો. ત્યાં એ વાત હતી કે બિન સદગુરુ કોઈ ન ભેદ લે, આ વાત લીધી છે. કાર્ય ભલે પોતે કરે છે તો પણ યથા યોગ્ય નિમિત્તનો સદભાવ હોય છે, નિમિત્ત વિના પણ નહીં અને નિમિત્તથી પણ નહીં. આવી વાત છે, નિમિત્ત વિના માને એ પણ ભૂલ્યો છે અને નિમિત્તથી માને એ પણ ભૂલ્યો છે. આવી વાત છે, કઈ જગ્યાએ ઉભા રહે હું? નિમિત્તથી નથી થતું માટે ઉડાડો નિમિત્તને તો એ કામ નહીં આવે, અને નિમિત્ત વિના નથી માટે નિમિત્તને પકડો, નિમિત્તથી થઈ જશે તો એ પણ વાત નથી, બે માં ગડબડ છે. આત્મા ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, એની પ્રતીતિ કરી રાગ રહિત થા, અભેદ સ્વભાવનું લક્ષ કરો, એમ દ્રવ્યાનુયોગ મહિમા ગાય છે. આ દ્રવ્યાનુયોગનો ટોટલ માર્યો છે, સારાંશ લઈ લીધો છે. આખા દ્રવ્યાનુયોગનું તાત્પર્ય શુદ્ધાત્માને બતાવવાનું છે કે આ આત્મા ચૈતન્ય આનંદ સ્વરૂપ છે. ચૈતન્યમાં જ્ઞાન દર્શન બંને આવી ગયા. આત્મા દર્શન જ્ઞાન અને આનંદ સ્વરૂપ છે, એની પ્રતીતિ કરીને, એવા રાગ રહિત આત્મતત્વની પ્રતીતિ કરીને અવસ્થામાં પણ રાગ રહિત થા, આ દ્રવ્યાનુયોગનું તાત્પર્ય છે. પ્રતીતિમાં દર્શન થયું, રાગ રહિત થવામાં વિતરાગી આચરણ થયું, અને અભેદ સ્વભાવનું લક્ષ્ય કરવું તે સમ્યક જ્ઞાન થયું. આમ દર્શન જ્ઞાનને ચારિત્ર ત્રણે લીધા છે. એક વાક્યમાં સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર. કહે છે કે આત્મા ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, એની પ્રતીતિ કરીને, હું એવો છું એમ પ્રતીતિ કરીને રાગ રહિત થા, એની પ્રતીતિ થયા વિના કોઈ રાગ રહિત થાય એ અશક્ય અને અસંભવિત છે. અથવા રાગ રૂપ રાગ સહિત હું છું, રાગ સ્વરૂપે હું છું, એવી પ્રતીતિમાં કોઈ રાગ રહિત થાય, એવી પ્રતીતિ સહિત કોઈ રાગ રહિત થાય એ વાત નહીં બની શકવા યોગ્ય છે. ગાથા છે, અમૃતચંદ્રાચાર્યનું પુષાર સિદ્ધિ ઉપાય નામનું શાસ્ત્ર છે, એની 14મી ગાથામાં મૂળ વિષય જે લીધો છે કે આત્મા રાગ રહિત ચિદાનંદ સ્વરૂપે હોવા છતાં રાગ સહિત ભાસે છે, એ જ અજ્ઞાનીઓને ભવ બીજનું કારણ છે. કેવી વાત છે, આત્મા મૂળ સ્વરૂપે ચિદાનંદ રાગ રહિત હોવા છતાં જે રાગ સહિત ભાસે છે એ જ અજ્ઞાનીઓને બાળજીવોને ભવ બીજનું કારણ છે. એ ભવનું બીજ ત્યાં પડ્યું છે. આત્મા ચિદાનંદ રાગ રહિત છે એવી પ્રતીતિ છે, એ પ્રતીતિ ભવ બીજને બાળનારી છે, એમાંથી ભવ બીજ બળી જશે. એટલે દ્રવ્યાનુયોગનો સારાંશ આ છે એમ કરીને વાત કીધી છે. દ્રવ્યાનુયોગ કઈ રીતે કહે છે, દ્રવ્યાનુયોગ શું આત્માનો કેવી રીતે મહિમા કરે છે, કે એક તો એ સીધો શુદ્ધાત્માને બતાવે છે, બીજા અનુયોગમાં સીધું બતાવવાનું નથી, આડકતરી રીતે શુદ્ધાત્માને બતાવે છે. અહીંયા સીધો શુદ્ધાત્માને બતાવે છે દ્રવ્યાનુયોગ, અને એ શુદ્ધાત્માનો મહિમા ગાય છે. મહિમા ગાતા એમ કહે છે કે એની પ્રતીતિ કરો, એનું લક્ષ કરો અને એનું રાગ રહિત આચરણ કરો. આ દ્રવ્યાનુયોગનો ઉદ્દેશ છે. ત્રણનુયોગની વાત એકમાં લઈ લીધી 912માં, અને દ્રવ્યાનુયોગનો વિષય 13 અને 14માં લીધો. ઓલા ત્રણ અનુયોગની વાત એક બોલમાં લીધી, આ એક અનુયોગ માટે બે બોલ આવ્યા છે. વિસ્તાર કર્યો છે ને વિષયનો, મહત્વનો વિષય છે એટલે એનો વિસ્તાર કર્યો છે. પણ શું છે કે જીવોને જો જ્ઞાનનો ઉઘાડ હોય તો એક પ્રગટ એ જ્ઞાનની શક્તિ છે કે જેનો ઉપયોગ એ દ્રવ્યાનુયોગ છોડીને બીજા વિષયમાં કરી લે છે. કાં તો જો જગતમાં જાય તો દુનિયાદારીમાં ક્યાંય ને ક્યાંય કોઈ ને કોઈ વાતમાં જાણપણામાં આગળ નીકળી જાય જગતના વિષયમાં, અને જો શાસ્ત્રમાં પડે તો કર્ણાનુયોગના વિષયમાં ગમે એવાની બુદ્ધિ જેટલી હોય એટલી ખપી જાય એવો વિષય છે. કર્ણાનુયોગનો એક વિષય એવો છે કે જેમાં જીવના અસંખ્ય પ્રકારના જે પરિણામ છે એ સંબંધી વિસ્તારથી વર્ણન છે, અને એના ફળનું પણ એમાં વર્ણન છે. એટલે ગમે એવો બુદ્ધિવાળો હોય તો એની બુદ્ધિ ત્યાં ખપી જાય એવો એ વિષય છે. એટલે મોટાભાગના તો બુદ્ધિવાળા વિદ્વાન કર્ણાનુયોગમાં ફસાય છે. કોઈ આસન્ન ભવ્ય જીવ છે એ દ્રવ્યાનુયોગમાં પ્રવેશ કરે છે, શુદ્ધાત્માને જાણે છે અને નિર્વિકલ્પ શુદ્ધાત્માની પ્રતીતિ જ્ઞાન કરીને મિત્રાગ થાય છે. એ રીતે દ્રવ્યાનુયોગ છે એ ચારેય અનુયોગમાં મુખ્ય પ્રધાન વિષયવાળો અનુયોગ છે. વળી દ્રવ્યાનુયોગમાં, આ ટોડરમાંથી એક ખાસ વાત કરી છે, વળી દ્રવ્યાનુયોગમાં નિશ્ચય અધ્યાત્મોપદેશની પ્રધાનતા છે. દ્રવ્યાનુયોગની અંદર જે નિશ્ચય એટલે સત્ય અધ્યાત્મોપદેશની પ્રધાનતા છે, શુદ્ધ આત્માના આધારે ઉત્પન્ન થાય એવા જે પરિણામ તેને અધ્યાત્મ કહીએ. ચારોનિયોગ કે વિષય મેં ટોડરમજી ને જો સ્પષ્ટીકરણ કિયા હૈ પર ગુરુદેવ કા પ્રવચન મેં દ્રવ્યાનુયોગ ક્યા ચીજ હૈ વો બાત લી હૈ. શરૂ મેં કહા કે શુદ્ધાત્મા કી દ્રષ્ટિ હોના, સમ્યક દ્રષ્ટિ હોના એ મૂળ ચીજ હૈ. સારે મોક્ષ માર્ગ મેં યાને સંસાર કે અભાવ કરને મેં, પરિભ્રમણ કો જન્મ મરણ કો નાશ કરને મેં કોઈ મૂળ ચીજ હોય, મૂળ ચીજ હો તો વો આત્મા કી શુદ્ધાત્મા કી દ્રષ્ટિ હૈ. તો સમ્યક દ્રષ્ટિ સમ્યક દર્શન કહેને મેં હું દ્રવ્યાનુયોગ મેં છે સીધા ઇસ વિષય પર આ શકે એસી એક કથની કી સાનુકૂળતા કોઈ ચારો અનુયોગ મેં હૈ તો દ્રવ્યાનુયોગ મેં હૈ. ઉસ દ્રવ્યાનુયોગ મેં વળી મેને પુનઃ દ્રવ્યાનુયોગ મેં નિશ્ચય અધ્યાત્મોપદેશ કી પ્રધાનતા હૈ. દૂસરે અનુયોગ મેં અધ્યાત્મ વિષય તો હૈ, એસા નહીં હૈ કે બાકી કે તીન અનુયોગ મેં અધ્યાત્મ નહીં હૈ, એસા નહીં હૈ. અધ્યાત્મ તો ચારો અનુયોગ મેં રહા હૈ, નિકાલના પડતા હૈ तीन अनुयोग में से तो अध्यात्म को निकालना पड़ता है कि कहाँ कैसे कहा, अध्यात्म की बात कहाँ कहाँ कैसे कही वो निकालनी पड़ती है। जबकि द्रव्यानुयोग में सीधी अध्यात्म की बात है, यानी आत्मा के सत्य स्वरूप की, निश्चय स्वरूप की वहाँ सीधी बात है। वो भी यही पद्धति से है कि कैसे ये शुद्धात्मा का आश्रय करें, कैसे उनका आधार से अपने परिणाम को शुद्ध करें, ऐसी कोई पद्धति है कथन की, तो वो द्रव्यानुयोग में है। ऐसे द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है। वहां दया दान आदि परिणाम का निषेध करते हैं, वहां द्रव्यानुयोग में अशुद्ध परिणाम होने से, दया दान आदि राग रूप परिणाम होने से, अशुद्ध मलिन परिणाम होने से द्रव्यानुयोग में आचार्यों ने, गणधरों ने दया दान आदि परिणाम का वहां निषेध किया है। सदाचरण की जहां बात चले त्या दया दान आदि करने के उद्देश्य की प्रधानता आती है, और जहां इससे आगे जाके शुद्धात्मा की दृष्टि करनी है, वितराग दृष्टि करनी है, राग रहित परिणाम को करना है, वहां राग को निषेध किए बिना राग रहित परिणाम हो सकता नहीं। और जिनेंद्र का जो मार्ग है वो वितराग मार्ग है, वो राग मार्ग नहीं है। इसलिए द्रव्यानुयोग में यही कथन की पद्धति चली। सारे जैन वांग्मय को देखे तो द्रव्यानुयोग जहाँ निरूपित हुआ है वहाँ दया दान आदि सभी प्रकार के राग परिणाम का निषेध किया गया है। शुरू में तो गुरुदेव ने इस बात की घोषणा की तो विद्वान लोग भी चौंके और उन्होंने ये विरोध किया कि ये बात कैसे बन सकती है, अगर हम दयादान आदि के आचरण नहीं करेंगे तो फिर करना क्या रहा हमारे लिए, क्या हम पाप करें। लेकिन ऐसी कोई स्थूल बात यहाँ नहीं है। जब दयादान आदि परिणाम का निषेध है तो क्या करना, वो भी कहा है कि वितराग परिणाम करना है। तो पहले तो चौंके, विरोध भी किया, जब उनको दिखाया कि मूल शास्त्र में द्रव्यानुयोग में ये बात बहुत जबरदस्त ठोस रूप में पड़ी हुई है और सैकड़ों हजारों वर्ष पहले के आचार्यों ने इस बात को अच्छी तरह रखी है, तो फिर ठंडे हुए कि नहीं, कुछ बात तो है हमारे घर की, हमने परिचय नहीं किया था, हमने नहीं देखा था, लेकिन बात है अपने घर की है। कहते हैं कि वहां जहां अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है वहां दयादान आदि परिणाम का निषेध करते हैं। अज्ञानी दयादान आदि में धर्म मानते हैं, भूल है। जो जीव अध्यात्म परिणाम को समझे नहीं, वितराग परिणाम और वितराग मार्ग क्या है वो समझे नहीं, और दयादान आदि परिणाम को ही धर्म माने, वो धर्म के विषय में तात्विक भूल है। स्वाध्याय का परिणाम भी आता है, सभी प्रकार का सुहराग आदि में सब बात ले लेना, आदि लिया ना, दया दान आदि, आदि मैंने वगैरह, तो उसमें स्वाध्याय का परिणाम, पूजा करने का परिणाम, धरती पर करने का परिणाम, अहिंसा पालने का परिणाम, संयम पालने का परिणाम, व्रतादि करने का परिणाम, सभी प्रकार का राग आ जाता है। सभी शुभ राग की बात लिया, अशुभ राग की तो चर्चा ही स्थान पे है, उसकी तो चर्चा करनी नहीं है। उसको तो कोई धर्म मानते नहीं, अन्य मत वाले भी नहीं मानते, जैन मत में तो ये सवाल ही नहीं। लेकिन दया दान आदि सभी प्रकार के शुभराग रूप जो परिणाम है उसको धर्म मानना वो नितांत अज्ञान है। मैंने 100% परमात्माओं को भी पाया जाता है, अब क्या करें, धर्मी जीव को भी शुभ परिणाम दिखने में आते हैं, वो भी करते हैं। वे महापुरुष ने किया तो हम क्यों नहीं करें, ये सवाल पैदा होता है कि उन्होंने सिर्फ इतना शुभ राग शुभ परिणाम किया इतना ही नहीं है, बाह्य दृष्टि से इनका जीवन इतना ही दिखने में आता है मगर वास्तव में इतना ही इसका जीवन और परिणमन नहीं है। ये इनकी बाह्य परिणमन की दशा है, इसके अंतरंग परिणमन में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अंतर्मुखी अंतर परिणाम है जो परिणाम को धर्म कहने में आता है। मोक्ष मार्गी धर्मात्मा जीवों को भी मुक्ति का मार्ग है वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम है इतना ही है, और संपूर्ण मोक्ष रूप परिणाम शुद्ध परिणाम नहीं होने से जो भी अशुद्धता रही वो अशुद्धता राग रूप रही, वो राग रूप अशुद्धता दया दान स्वाध्याय शास्त्र स्वाध्याय आदि के परिणाम में रूप दिखने में आती है। ये अशुद्धता का दर्शन इसमें करो, रागादि परिणाम में तो अशुद्धता का दर्शन करो और वितरागी परिणाम में शुद्धता का दर्शन करो, क्योंकि साधक को धर्मात्मा को शुद्धता अशुद्धता दोनों एक साथ रहती है, कुछ अंश में शुद्धता है परिणाम के कुछ अंश में अशुद्धता भी है। संपूर्ण शुद्धता हो जाती तो अरिहंत सिद्ध दिशा प्रकट हो जाती, ऐसी दिशा अभी नहीं हुई है तो वहां अशुद्धता रही, वो अशुद्धता किस रूप में दिखाई देती है कि दया दान स्वाध्याय आदि के राग रूप में दिखने में आती है। मुनि है तो उनके संयम आदि के जो व्रत आदि के महाव्रत के परिणाम है, पंच महाव्रत समिति गुप्ति 28 मूल गुण के जो परिणाम है उस रूप दिखने में आती है। ये अशुद्धता दिखाने की चीज है। लोग अज्ञानी जिसको धर्म मानते हैं जिनेन्द्र भगवान उसको अधर्म और अशुद्धता कहते हैं, लेकिन इस बात सुनी नहीं, इस अलौकिक बात का परिचय नहीं तो वो अच्छी वो समझ में नहीं आती कि ये बात कैसे, सारी दुनिया तो धर्म मानती है और ऐसे मानने वाले प्रतिशत कितने परसेंट में लोग इतना ऐसा मानते हैं, क्या परसेंट से ये बात पक्की करेंगे क्या है? सत्य को संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है और सत्य संख्या से नापा जाता भी नहीं है। कहते हैं कि वहां द्रव्यानुयोग में, जहां द्रव्यानुयोग का शास्त्र में कथन चला है वहां दया दान आदि परिणाम का निषेध किया है, वो इसलिए किया है के अज्ञानी जीवों ने दया दान आदि में धर्म मान रखा है, वो इनकी भूल है। ये भूल बताने के लिए ये बात कही गई है। मूल गुण कहो और धर्म नहीं, वो दो बात कैसे बनेंगे? मूल गुण मैंने ये बाह्याचरण के मूल कोड है, ओरिजिनल कोड है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। मतलब उत्तर गुण में दोष लगे तो ठीक है, अगर मूल गुण में दोष लगा तो भाई मुनि दशा भी उनकी नहीं रहती, ये स्थिति हो जाती है। मैंने एडजस्टमेंट का, आचरण में जो एडजस्टमेंट का विषय है वो कुछ हद तक है, वो उत्तर गुण में है, मूल गुण में नहीं है। मूल गुण में ये बात कहीं भी एडजस्ट नहीं की जाती है, ये बात है। जैसे बाह्य में नग्नपणा है मुनि को, कोई देश काल अनुकूल नहीं है, इसलिए उसमें कुछ फेरफार करे तो ये बात नहीं चल सकती। ये मूल गुण है, लेकिन ये मूल गुण है इसलिए जो जो जिसने ये नग्नपणा किया वही मुनि हो गए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो बाह्य की बात है। ये रागादि अशुद्ध परिणाम के निमित्त से होने वाली चीज है। शुद्धात्मा के जो अध्यात्म परिणाम है वो तो बिल्कुल दूसरी चीज है, इससे बिल्कुल अतिरिक्त दूसरी चीज है। दोनों अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना कार्य करती है एक साथ में, इतनी बात जरूर है कि है एक साथ में, इसलिए उनको निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप में भी दिखाई गई है। लेकिन निमित्त और नैमित्तिक दोनों अपने अपने स्थान में स्वतंत्र है, एक साथ है, आपस में सानुकूल होने से अनुकूल होने से उसको निमित्त नैमित्तिक रूप में आरोप किया जाता है।
अंतरंग नहीं होवे तो बाह्य होवे तो पूरा,
बाह्य होवे और अंतरंग नहीं होवे तो उसको द्रव्य लिंग कहते हैं, अंतरंग को भावलिंग कहते हैं और बाह्य को द्रव्यलिंग कहते हैं।
भावलिंग नहीं है,
भावलिंग नहीं है और द्रव्यलिंग होवे द्रविलिंग कोई आत्मा को कार्यकारी
नहीं होता,
क्योंकि वो एकांत अशुद्धता रूप परिणाम के निमित्त से होने वाली चीजें। रागादि से तो कोई कार्य नहीं होता, धर्मी और मोक्ष मार्गी के शुभ भाव और राग भी उनको आत्महित में कार्यकारी नहीं, गुणस्थान में आगे बढ़ने में कार्यकारी नहीं। तो फिर अज्ञानी का शुभ राग कार्यकारी हो, लाभ का कारण हो, मोक्ष का कारण हो, सो बात तो कतई है नहीं। क्या कहा कि द्रव्यानुयोग में स्वभाव दृष्टि कराने के हेतु पुण्य का निषेध किया है या करवाया है। देखो ये पद्धति चली है, ये द्रव्यानुयोग की खास पद्धति है, ये द्रव्यानुयोग की खास पद्धति है। वैसे ही अब ये जो जैन संप्रदाय है सारा, इसमें कोई विशिष्ट बात है तो यह है कि जहां द्रव्यानुयोग है वहां स्वभाव दृष्टि कराने के हेतु दूसरी कोई दूसरा कोई हेतु से नहीं, ठीक यही हेतु से यही पद्धति से पुण्य आदि जितने भी सुपरिणाम है उनका निषेध करवाया है। करीब करीब श्वेतांबर संप्रदाय में तो ये द्रव्यानुयोग का जो प्रकरण है वो तो चला गया है, द्रव्यानुयोग वहां दिखने में नहीं आता, कुछ बात थोड़ी अध्यात्म की आती है फिर भी द्रव्यानुयोग का विषय नहीं चला है। तो अध्यात्म की बात होते हुए भी वहां पुण्यादि का निषेध देखने में नहीं आता। ये दिगंबर साहित्य ऐसा रहा कि जहां द्रव्यानुयोग का विषय चला है आचार्यों ने ये पुण्यादि परिणाम के पंचास्तिका है। द्रव्यानुयोग का प्राथमिक ग्रंथ है भगवान कुनकुंदाचार्य का, तो ये कहा कि तुम राग मत करो, तनिक भी राग मत करो, ऐसे करके पीछे के जो तुम गाथाएं ली है और सब बात ऐसे पंचास्तिका है। वहां तो सब छह द्रव्य का वर्णन लिया, नौ तत्व का वर्णन लिया, ये सब बात तो ले लिया,
170 गाथा है, 170। संयम तथा तप युक्त ने पण दूर तर निर्वाण है। जो संयम पालता है, तप करता है, उसको भी निर्वाण निर्वाण दूर है। क्यों? सूत्रो पदार्थो जिनवरो प्रति चित्त मारुचि जोर है। सूत्रों मैंने शास्त्र, पदार्थों मैंने छह द्रव्य का निरूपण है, ऐसा शास्त्र का विषय, और जिनवर मैंने जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र देव शास्त्र, उसमें जो रुचि मैंने शुभ परिणाम रहता है और संयम और तप युक्त रहता है, उनको भी निर्वाण बहुत दूर है। कैसी बात किया है, पंचास्तिकाय की बात किया है। जिन सिद्ध प्रवचन चैत प्रत्ये भक्तिधारी मन विषय, 101 देव, संयम परम सह तप करे ते जीव पामे स्वर्ग ने। ये स्वर्ग ने पाम से मोक्ष ने
नहीं
है। कैसे? जीन सीध प्रवचन चैत प्रत्ये भक्ति, ये द्रव्यान युग में ये बात चली है, 2000 साल पहले ये बात चली है, कुमकुंदाचार्य की मूल गाथा है। अरहंत जीन मैंने अरहंत सिद्ध छेदी पयवन भत्तो परेण निमेण जो कुण दी तवो गम सो सुर लोगम समाधि, यही ते सुर लोग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष में नहीं जाएंगे। इसलिए तम्मा इसलिए तेथी न करवो राग जरिए क्या है पण मोक्षे छुए। वितराग थईने ए रीते ते भव्य भवसागर करे। वितराग होकर ही भवसागर कर सकते हैं। राग से स्वर्ग में जाया जाता है, लेकिन जन्म मरण का नाश राग से होता नहीं। ये तीन गाथा आखिर में, ये पंचास्तिकाएं में तो यहां कहते हैं कि ऐसा क्यों कहा, क्या ऐसी बात जिनवरों को समझाई है, क्या ऐसी बात महामुनियों को कही। कोई ये कहेंगे कि ये ऊंची ऊंची बात तो कोई महामुनियों के लिए महात्माओं के लिए होंगी, हमारे लिए कैसे हो सकती है। तो उनको ये कहते हैं कि द्रव्यान युग में ऐसा पुण्य का निषेध किया, इसके पीछे कोई हेतु है तो स्वभाव दृष्टि करवाने का, वितराग दृष्टि करवाने का है। मैंने जो संसारी जीव शुभ परिणाम में धर्म मानकर फंसे हुए हैं, उनको वितराग दृष्टि की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसको वितराग दृष्टि की प्राप्ति के लिए, अज्ञानी में से ज्ञानी बनाने के लिए उनको ये बात कही जाती नहीं है। इतनी बात है, दृष्टि कराने के हेतु, कोई केवल ज्ञान कराने के हेतु ये बात है, ऐसी बात नहीं लगी। दृष्टि कराने के हेतु इसका निषेध किया गया है, जो सही है। इसके बिना जहां तक शुभ परिणाम में रुचि रहती है, अर्थात रुचि का विषय जहां तक अशुद्धता रहती है, वहां तक इस रुचि का विषय शुद्ध आत्मा हो ही नहीं सकता, जो अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप की अरुचि है वहां तक, और अपना स्वरूप की अरुचि में ही शुभ की रुचि रह सकती है, दोनों रुचि एक साथ रह सकती नहीं। ये स्थिति है। द्रव्यान युग में स्वभाव दृष्टि करवाने हेतु पुण्य का निषेध करवाया है, अज्ञानी बाह्य क्रिया में पुण्य मानते हैं, यहाँ तो सम्यक दृष्टि के पुण्य का भी निषेध किया है। अज्ञानी जीव तो अकेले पुण्य परिणाम को ही मानते हैं, स्वीकारते हैं हित का कारण, मोक्ष का कारण, कल्याण का कारण, चलो इतना हमने कार्य किया, दान दिया या संयम पाला या घंटा दो घंटा शास्त्र स्वाध्याय किया, तो हमने कुछ हमारे कल्याण के लिए कुछ ने कुछ किया, ऐसे मानते हैं। कुछ तो किया कि नहीं किया कल्याण के लिए, ऐसे मानते हैं। उनको कहते हैं कि इनका तो निषेध है ही द्रव्यानुयोग में, ये तो जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य ध्वनि में से मुख्य अनुयोग चलता है, उसका निषेध तो है ही, लेकिन यहाँ तो सम्यक दृष्टि के पुण्य का भी निषेध किया है कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, उनको भी जितना शुभ राग का अंश रहा है, उनको रुचि नहीं है राग की, रुचि उनकी शुद्ध आत्मा की है, स्वरूप की रुचि है, चिदानंद स्वरूप की रुचि है। उनको जो भी राग आ जाता है, करना नहीं है फिर भी आ जाता है, तो उनका भी निषेध है, क्योंकि करना नहीं है इसलिए उनका निषेध है। ऐसी एक मोक्ष मार्ग की पद्धति है, जहां अंतरंग में विधि निषेध इस प्रकार का चलता है। बाहर में विधि निषेध की क्रियाएं हैं ना, ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, कि ये तो बाहर की चीज बाहर में रही, उसका विषय तो शुभ और अशुभ दो है, लेकिन इसके आगे जहां मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, जहां आत्मा के शुद्धिकरण का जहां विषय चला है, ऐसा जो अध्यात्म प्रकरण है, द्रव्यानुयोग का प्रकरण है, वहां तो विधि निषेध का प्रकार यही रहा कि अंतर में अपने शुद्धात्मा का आदर करना, श्रद्धा से, ज्ञान से और आचरण से, जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहते हैं, सूत्र जी में पहला सूत्र है। और इसके अलावा जितने भी परिणाम है, चाहे शास्त्र स्वाध्याय के हो, किसी भी प्रकार के शुभ राग रूप परिणाम हो, उनका निषेध है। परिणमन में ये विधि निषेध चलता है, और जब परिणमन में ये विधि निषेध चलता है, तब ही तो राग क्रमशः हटता जाता है, गलता जाता है, टूटता जाता है और वितराग हो जाता है। ओ जी, जो इस प्रकार के विधि निषेध में क्रियान्वित है, जो इस प्रकार के विधि निषेध में नहीं है, ऐसे जीव को अनादि से राग का आदर है, वो वितरागता की प्राप्ति नहीं कर सकते, चाहे कितने भी बाह्य विधि निषेध में वो खड़ा हो, लेकिन राग का आदर है, वो वितरागता को जघन्य रूप से भी वो पा नहीं सकता, प्राप्ति नहीं होती। ऐसी एक सिद्धांतिक परिस्थिति है। नहीं, कहीं कहीं नहीं घुसा हुआ, वो अपने आत्मा में मुख्यतया चलता है। बाहर में जो भी प्रकार है वो पूर्व पुण्य के अनुसार है, लेकिन इसका मन कहीं नहीं लगता। जैसे प्राण चले जाने पर मुर्दा पे किसी का मन नहीं लगता, चाहे कितना भी प्रियजन हो, परिवार में प्रियजन होते हैं, कितना भी प्रियजन हो, प्राण चले जाने पर मुर्दा पर किसी को राग रहता है
नहीं।
कहते हैं कि निकालो जल्दी से, क्या कहते हैं, जल्दी से निकालो, ऐसे कहते हैं, देर मत करो, रहता है इसमें प्रीति। वैसे ही सम्यक दृष्टि के कितना भी वैभव हो पूर्व पुण्य के अनुसार, वो प्राण रहित मुर्दा जैसा दिखता है उसको, कैसा दिखता है,
मुर्दा,
प्राण रहित मुर्दा जैसा दिखता है। अज्ञानी को थोड़ा भी संयोग है पूर्व कर्म के अनुसार, उसमें भरा भरा सा लगता है, मेरे पास इतना तो है, इतना तो है, इतना तो है, इतना, और सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होते हुए भी उनको ये निष्प्राण लगता है, मेरी आत्मा में सब कुछ है, अनंत गुण का, अनंत परमानंद आदि ज्ञान का सभी वैभव मेरे आत्मा में है और मेरा वैभव मेरे से बाहर कहीं भी नहीं है। ज्ञान दर्शन आनंद प्राण मेरा मेरे में है और मेरा प्राण जहाँ नहीं है वो मेरे लिए सब मुर्दे हैं, उनको ये सब खाली लगता है। लोग ये देखते हैं कि देखो चक्रवर्ती को कितना वैभव का सुख है, उनके लिए वो सुख नहीं है। जितना उसका राग है, राग की क्रिया उनको होती है, उसका उनको दुख महसूस होता है। सुख तो है ही नहीं लेकिन उनको दुख महसूस होता है, दुख का अनुभव होता है, सुख नहीं होता है। लेकिन बाह्य दृष्टि से वो बात समझ में नहीं आती। सोगानी जी ने कहा तो लोग देखते हैं कि चक्रवर्ती छह खंड साधने को चले, क्या कहा, इनके पिताजी के वारसे में छह खंड मिलता है नहीं, क्योंकि इनके पिताजी का ये पुण्य नहीं था, चक्रवर्ती के पिता पुण्य के चक्रवर्ती नहीं थे, ये पुण्य तो उनके उदय होते हैं, उदयमान होते हैं जबकि उनको छह खंड की संपत्ति मिलती है। तो ये साधने को जाते हैं छह खंड। तो गांधी जी ने ये कहा कि लोग ये देखेंगे कि चक्रवर्ती चले छह खंड साधने को, लेकिन अंतर में तो वो जाते हैं साधने को, अखंड को, छह खंड को नहीं लेकिन अखंड को साधने में जाते हैं। भरत चक्रवर्ती का है तो प्रसिद्ध बात है, उनका तो बहुत प्रसिद्ध बात है कि शाम को जब युद्ध विराम होता था वो अपने धर्म ध्यान में इतने मस्त हो जाते थे कि वो निर्विकल्प स्वानुभूति में चले जाते थे। इतनी साधना तो वो सम्रांगण में करते थे, जो लड़ाई के मैदान में जहाँ पड़ाव रखा हो वहाँ वो सम्रांगण में इतनी साधना करते थे। जब तो इनकी ये शुद्धात्म परिणति भीतर में इतनी तेज जलद कॉन्सेंट्रेट हो गई थी, उन्होंने दीक्षा अंगीकार करते ही उनको केवल ज्ञान को प्राप्त किया। न कोई जप जपा, न कोई तप तपा, न कोई पंचमावृत अठावीस मूल गुण के व्यवहार में उनको जाना हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीधा ही जैसे ध्यान में बैठे श्रेणी लगा के वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर दिया। क्योंकि गृहस्थ दशा मात उनको ये धर्म परिणति थी वो इतनी तगड़ी कर दी थी, इतनी मजबूत थी वो, कि बस जब उनको ये पता चला कि अभी पुरुषार्थ ऐसा जोर करता है कि ग्रस्त दशा के जो विकल्प हैं, ये चक्रवर्ती के जो राज के विकल्प है उसका दुख अब सहा नहीं जाता, क्या उसका सुख तो है ही नहीं लेकिन ये जो पंचायत है सारे राज की, इसकी जो आकुलता है उसका दुख हम सहन नहीं कर सकते। तो सहज ही जैसे नाक में से कफ निकालते हैं वैसे ही निकाल देते हैं, ये बोझा लगता है ना नाक में तब तो निकालते हैं, इकट्ठा होके जब नासिका में आता है तो बोझा लगता है तो निकाल देते हैं लोग, तो इसमें कोई तकलीफ पड़ती है क्या, कोई तकलीफ नहीं पड़ती। ऐसे पांच इंद्रियों के विषयों की किसी भी प्रकार की जिसको कमीना नहीं थी, ऐसे भरत आदि चक्रवर्ती ने इसका त्याग इतनी सहज रूपता से आसानी से किया है, इसमें कोई दुख नहीं हुआ है कि ये सब छोड़ना पड़ता है, परिवार को छोड़ना पड़ता है, रानियों को छोड़ना पड़ता है, पुत्रों को छोड़ना पड़ता है, इनके तो है सब ऐसे ही पुण्यवंत है तो पुत्र भी ऐसे होते हैं, पत्नियां भी ऐसे होती हैं, लेकिन शुरू से ही सबको मुर्दा देखा है तो उनको कोई उसमें तनिक भी उसमें दुख होता
नहीं,
दुख तो होता नहीं, लेकिन वो अधिक सुख में चले जाते हैं। एगंत सुई मुनि वितराग, सुख में जाते हैं, दुख का तो वहां सवाल ही नहीं। कहते हैं कि यहाँ तो सम्यक दृष्टि के पुण्य का भी निषेध किया है, और ये पुण्य को सम्यक दृष्टियों ने टाला है। अरियंत दशा एक ऐसी दशा है, इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि जहाँ पुण्य का अभाव किया गया है वहाँ पुण्य परिणाम अरियंतों को होते नहीं। वहाँ न 28 मुर्गों का पालना है, ना कोई महाव्रत आदि का पालन पोषण करना है। परिपूर्ण वितराग दशा में वो शादि अनंत काल रह जाएंगे, किसी भी प्रकार के पुण्य के परिणाम वहाँ उत्पन्न नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस सिद्धांत का, द्रव्यानंद युग का, कि शुरू से ही उन्होंने पुण्य का निषेध करके उसको टाल दिया परिपूर्ण रूपे, परिपूर्ण रूपेण उसको खत्म कर दिया। इसलिए सम्यक दृष्टि के पुण्य का भी निषेध है ऐसा क्या। यहाँ तो मिथ्या दृष्टि को पुण्य की रुचि होने से उनको ये बात सुहाती नहीं, दिखती नहीं, क्या हम पुण्य छोड़ देवे, हम ये ऐसे अच्छे कार्य को छोड़ देवे। भैया ये तो मोक्ष मार्ग में दृष्टि स्वभाव दृष्टि करने में उसका निषेध ही है, यही मार्ग है, सही मार्ग तो यही है। और वितराग हो गए, उन्हें पूर्ण रूपेण उसका त्याग कर दिया, बताते हैं कि उनके निषेध करके उसकी जो सफलता है उसमें उसका त्याग किया है। स्वभाव के आश्रय से ही धर्म है ऐसा समझाते हैं। द्रव्यानुयोग में कोई खास बात तो रही तो यही है कि स्वभाव के आश्रय से, आत्मा के स्वभाव के आश्रय से ही धर्म परिणाम की उत्पत्ति होती है। जो दर्शन के श्रद्धा के परिणाम है उनको सम्यक श्रद्धान कहते हैं, स्वभाव के आश्रय से जो ज्ञान के परिणाम है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, और जो स्वरूप स्थिरता के परिणाम है उसको स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, और विशेष स्वरूप लीनता होती है तो उसको तप कहते हैं। ये शुद्ध परिणाम के ही नाम है मूल में, तो मूल में जो नाम है तप का, व्रत का, भक्ति का, जितना भी नाम है मूल तो शुद्ध परिणाम के नाम है। फिर साथ ही जो अशुद्ध शुभ परिणाम रहा उनके पर उसका उपचार करके उनको भी ये नाम दे दिया है, ये उपचार से दे दिया है। पड़ोसी को चाचा कहना इतनी बात है, बराबर पड़ोस में वास्तव में ऐसे नहीं है, द्रव्यानुभव में वास्तव।